जब किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात होती है ना, तो हम सब वहां एक तरह की सटीकता की उम्मीद करते हैं, मतलब एकदम इंजीनियरिंग लेवल की सटीकता।
हाँ बिल्कुल, वो तो है ही, बाइनरी चीज होती है वो।
एग्जैक्टली। जैसे अगर किसी इंसान की हड्डी टूटती है तो एक्सरे में वो सफेद टेढ़ी लाइन बिल्कुल साफ दिख जाती है और डॉक्टर बस इशारा करके कह सकता है कि भाई ये रही समस्या।
सही बात है, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, बहुत ही साफ और स्पष्ट।
और इस चीज से ना एक तरह की तसन्नी भी मिलती है। इंसानी फितरत है कि हमें चीजें साफ दिखना और एक स्पष्ट कैटेगरी में होना बहुत पसंद है।
बिल्कुल।
लेकिन जैसे ही कोई इंसान रियल एस्टेट और घर खरीदने की दुनिया में कदम रखता है, अचानक से वो एक्सरे मशीन काम करना ही बंद कर देती है। मतलब पूरा का पूरा परिदृश्य पूरी तरह से धुंधला और जटिल हो जाता है।
हाँ, इसे आप डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स कह सकते हैं, मतलब धुंधले पानी का सबसे सटीक उदाहरण, जहाँ सतह से कुछ और दिखता है और गहराई में उतरने पर सच्चाई कुछ और ही होती है।
बिल्कुल सही कहा। और आज की हमारी इस गहराई से की गई पड़ताल का विषय भी यही है। आज हम रियल एस्टेट के सबसे बड़े भ्रम, मतलब जिसे हम लोडिंग फैक्टर स्कैम कहते हैं, उसके काले सच का विश्लेषण करने वाले हैं,
जो कि बहुत जरूरी विषय है।
हाँ। और आज हमारे पास काफी सारा सोर्स मटेरियल है। रियल एस्टेट कानूनों पर लिखे गए कुछ बहुत ही अहम लेख हैं, ब्लॉक री स्टेट नाम की कंपनी के आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट्स हैं, डेटा प्राइवेसी, विशेष रूप से DPDP एक्ट पर तकनीकी नोट्स हैं, और ब्लॉक री स्टेट का एक विजुअल लोगो का भी जिक्र है।
काफी विस्तृत जानकारी है हमारे पास आज।
बिल्कुल। तो हमारा आज का मिशन ये समझना है कि कैसे कुछ बिल्डर्स खरीदारों की गाड़ी कमाई लूट रहे हैं और कैसे एक नई ब्लॉकचेन आधारित प्रणाली घर खरीदने की इस पूरी डरावनी प्रक्रिया को अंधेरे से निकालकर पारदर्शी बना रही है।
और सुरक्षित भी बना रही
हाँ,
है।
सुरक्षित भी। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं एक चौंकाने वाले गणित से शुरुआत करना चाहूंगा।
बताइए।
अदना कीजिए कि कोई परिवार 1500 स्क्वायर फीट का एक शानदार घर बुक करता है। कीमत तय होती है 10,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट।
ठीक है।
तो कुल मिलाकर 1.5 करोड़ रुपए का निवेश हो गया। लेकिन जब महीनों बाद चाबी मिलती है और वे अंदर कदम रखते हैं तो घर सिर्फ 950 स्क्वायर फीट का निकलता है। मतलब एक स्टैंडर्ड सोफा भी ठीक से नहीं आ रहा वहां।
ये बहुत आम बात है आजकल।
अरे, 55 लाख रुपए हवा में गायब हो गए। मतलब आखिर ये कैसे संभव है कानूनी तौर पे?
सुनने में तो ये किसी डकैती जैसा ही लगता है, लेकिन इसे बड़ी ही खामोशी से और पूरी तरह कानूनी दायरे के भीतर अंजाम दिया जाता है।
वो कैसे?
ये पूरा खेल कारपेट एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया के बीच का है। अगर हम इसके इतिहास में जाएं ना, तो शुरुआत में बिल्डर्स ने लॉबी, सीढ़ियों, एलिवेटर शाफ्ट और जो बड़े क्लब हाउस जैसी साझा सुविधाएं होती हैं, उनका खर्च निकालने के लिए इस सुपर बिल्टअप के कॉन्सेप्ट को शुरू किया था।
अच्छा, तो शुरू में मंशा गलत नहीं थी?
नहीं, तर्क ये था कि भाई ये सुविधाएं सभी के लिए हैं, तो इनका खर्च भी सभी को उठाना चाहिए। ये बस एक लागत वसूलने का तरीका था।
जो कि एक हद तक तार्किक भी लगता है। सीढ़ियां बनाने में भी तो सीमेंट और ईंटें लगती ही हैं ना?
बिल्कुल लगती हैं, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब ये एक उचित लागत से बदलकर मुनाफा कमाने का एक अंधा हथियार बन गया।
अच्छा,
आज के समय में मैंने देखा है कि कुछ प्रोजेक्ट्स में 25% से लेकर 45% तक का लोडिंग फैक्टर जोड़ दिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई व्यक्ति उस हवा के लिए अल्ट्रा लग्जरी कीमत चुका रहा है जहां वो रह भी नहीं सकता।
45%? बाप रे।
हाँ, और सबसे बुरी बात यह है कि खरीदार को ये नुकसान दो बार उठाना पड़ता है।
दो बार कैसे? एक बार तो घर खरीदते वक्त दे दिया पैसा।
पहला नुकसान तो बेस प्राइस में होता है, जब वे एक ऐसी जगह के लिए करोड़ों रुपए देते हैं जो उनके घर के अंदर है ही नहीं, और दूसरा नुकसान होता है जिंदगी भर के भारी मेंटेनेंस चार्ज के रूप में।
ओहो, मतलब मेंटेनेंस भी उसी पर लगता है?
एग्जैक्टली। हाउसिंग सोसाइटी जो मेंटेनेंस चार्ज वसूलती है, वो भी उसी बढ़े हुए सुपर बिल्टअप एरिया पर गिना जाता है। मतलब जो जगह कभी मिली ही नहीं, उसकी सफाई और रखरखाव का बिल हर महीने चुकाना पड़ता है।
रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है मुझे। भारत में रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट जैसी मजबूत सरकारी व्यवस्था लागू है ना?
हाँ बिल्कुल है।
और रेरा ने तो स्पष्ट रूप से नियम बनाया है कि बिल्डर्स को सिर्फ कारपेट एरिया ही बेचना होगा, मतलब घर की दीवारों के अंदर की वो जगह जहां सच में कारपेट बिछाया जा सके। इसमें बाहरी दीवारें या साझा जगहें शामिल नहीं होती। तो जब कानून इतना साफ और सख्त है, तो फिर भी ये स्कैम कैसे चल रहा है?
यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री, मतलब सूचना की असमानता का खेल है पूरा। बिल्डर्स बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कानून क्या कहता है, लेकिन वे इंसानी मनोविज्ञान और मार्केटिंग ट्रिक्स का बहुत चालाकी से इस्तेमाल करते हैं।
कैसे?
जब कोई परिवार साइट विजिट के लिए जाता है तो उन्हें चमचमाते ब्रोशर्स और शानदार 3D मॉडल दिखाए जाते हैं, और वहाँ जो सेल्स टीम होती है वो जानबूझकर बड़ा सुपर बिल्ट अप एरिया बोलकर बताती है।
ताकि प्रति स्क्वायर फीट की बढ़ सस्ती लगे।
एकदम सही पकड़े आप, 8,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट की दर सुपर बिल्ट अप पर सुनने में बहुत आकर्षक लगती है, बजाय 12,000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट कारपेट एरिया पर।
हाँ, मनोवैज्ञानिक तौर पे 8,000 सस्ता लगता है।
बिल्कुल, वे बातों में उलझा देते हैं, और असली कारपेट एरिया कानूनी कागजों जैसे अलॉटमेंट लेटर के बारीक अक्षरों में कहीं छिपा दिया जाता है, और जब तक खरीदार को इस अंतर का पता चलता है तब तक उनकी बुकिंग की एक बड़ी रकम फंस चुकी होती है।
यहाँ से कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम सिर्फ ईंट और सीमेंट की बात नहीं कर रहे, हम तकनीक और भावनाओं की बात कर रहे हैं।
बिल्कुल सही बात है।
मतलब किसी भी इंसान या परिवार के लिए घर खरीदना उनके जीवन का सबसे बड़ा वित्तीय और भावनात्मक कदम होता है। लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा देते हैं इसमें।
हाँ, बहुत इमोशनल जर्नी होती है ये।
लेकिन सालों से ये पूरी प्रक्रिया एक अजीब से अंधेरे और चिंता से भरी रही है। अपनी कमाई देकर एक कागज पर साइन करना और फिर 3 से 4 साल तक चुपचाप इंतजार करना, बस प्रार्थना करना कि बिल्डर कोई धोखा ना दे।
और ये चिंता बहुत स्वाभाविक है। लोग सोचते हैं कि क्या बिल्डर सही सामग्री इस्तेमाल कर रहा है, क्या जमीन के कागजात असली हैं, कहीं प्रोजेक्ट बीच में ही तो नहीं रुक जाएगा।
एग्जैक्टली, और यहीं पर ब्लॉकर स्टेट नाम की इस ब्लॉकचेन तकनीक की एंट्री होती है, जो इस पूरी व्यवस्था को पलट रही है।
हाँ, ब्लॉकर स्टेट ने इस पूरी प्रक्रिया में एक तरह का पारदर्शी शीशा लगा दिया है। जो अच्छे और ईमानदार बिल्डर्स हैं वे अब इस तकनीक को ईमानदारी के सर्वोच्च प्रमाण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।
अच्छा,
हाँ, अब किसी भी संभावित खरीदार को सेल्स ऑफिस में जाकर वो नकली प्लास्टिक मॉडल या रेंडर्ड वीडियो नहीं देखना पड़ता।
तो फिर वे क्या देखते हैं? मतलब अगर मॉडल नहीं है तो क्या है?
वे बस अपने स्मार्टफोन से एक ब्लॉक रीस्टेट का QR कोड स्कैन करते हैं और तुरंत उनके फोन पर उस प्रोजेक्ट का और उनके भविष्य के घर का एक लाइव हार्टबीट डैशबोर्ड खुल जाता है।
लाइव हार्टबीट डैशबोर्ड।
जी, ये कोई एनिमेटेड ग्राफिक नहीं होता, बल्कि उस प्रोजेक्ट की असल लाइव धड़कन होती है।
यार, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी अजन्मे बच्चे का अल्ट्रासाउंड देखना।
बिल्कुल, बहुत ही उम्दा उदाहरण दिया आपने।
मतलब कोई भी इंसान अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट या कुछ बेजान कागजात नहीं देख रहा है, वो अपनी ही आंखों के सामने अपनी विरासत की नींव से लेकर छत तक का हर एक हिस्सा बनते हुए देख रहा है। इस डैशबोर्ड पर हर वीडियो अपडेट, लीगल टाइटल का स्टेटस और स्ट्रक्चरल हेल्थ बिल्कुल लाइव दिखाई देती है।
और सोचिए इसका मनोवैज्ञानिक असर कितना गहरा होता होगा।
डर और चिंता थी वो अब पूर्ण आनंद और रोमांच में बदल जाती है।
बिल्कुल।
लेकिन रुकिए, यहाँ थोड़ा आलोचनात्मक नजरिया अपनाना भी जरूरी है।
हाँ हाँ, बिल्कुल पूछिए।
देखिए, ये लाइव हार्टबीट डैशबोर्ड बहुत सुंदर दिखता होगा, भावनाओं को भी सुकून देता है, लेकिन इस डैशबोर्ड में जो डेटा आ रहा है क्या वो सच है? अगर सब कुछ बिल्डर के हाथ में है तो बिल्डर खुद भी तो झूठे वीडियो, पुरानी तस्वीरें या किसी और अच्छी साइट का डेटा अपलोड कर सकता है ना?
ये बहुत ही वाजिब सवाल है।
तो इस सिस्टम में वो भरोसा कहां से आ रहा है कि जो दिख रहा है वही सच है?
यहीं पर इनकी काफी चतुर इंजीनियरिंग सामने आती है, क्योंकि ब्लॉक रीस्टेट खुद भी बिल्डर पर भरोसा नहीं करता।
अच्छा, वो बिल्डर पर भरोसा नहीं करते?
बिल्कुल नहीं। इस भरोसे को कायम करने के लिए उनका निरंतर सत्यापन इंजन या रिलेंटलेस वेरिफिकेशन इंजन काम करता है, और इस इंजन की असली ताकत है उनके ऑन ग्राउंड रनर।
ये ऑन ग्राउंड रनर कौन होते हैं?
अवधि के दौरान एक या दो बार नहीं बल्कि लगातार कई बार साइट का दौरा करते हैं, मल्टीपल साइट विजिट्स करते हैं वो।
और वे साइट पर जाकर करते क्या है?
वे कोई एडिट की हुई सुंदर फोटो नहीं लाते, वे वहां की वास्तविकता का कच्चा अनएडिटेड वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, और ये वीडियो सीधे प्लेटफॉर्म पे जाता है जहां कोई फिल्टर या कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर काम ही नहीं कर सकता।
रुकिए रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा झोल हो सकता है।
क्या?
अगर कोई रनर साइट पर जा रहा है तो वो एक इंसान ही है ना, बिल्डर उस रनर को ही पैसे खिला सकता है। बिल्डर कह सकता है कि भाई तुम सिर्फ इस अच्छी वाली दीवार का वीडियो बनाओ, पीछे जो खराब काम हो रहा है उसे कैमरे मत दिखाओ।
हाँ, ये हो सकता है।
तो वीडियो में तो वही दिखेगा जो बिल्डर और बिका हुआ रनर दिखाना चाहते हैं, है ना?
ये एक बहुत ही शानदार पॉइंट है, और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहीं पर सिस्टम का असली डिजाइन सामने आता है। बात सिर्फ एक रनर के वीडियो बनाने तक सीमित नहीं है, उस वीडियो की निष्पक्षता कैसे तय होगी।
वही तो मेरा सवाल है।
इसके लिए एक 3-person anonymous जूरी होती है, मतलब 3 लोगों की एक अज्ञात जूरी।
ये जूरी कैसे काम करती है?
देखिए, जब रनर वीडियो अपलोड करता है तो वो सीधे डैशबोर्ड पर लाइव नहीं होता। वो वीडियो देश के किसी भी हिस्से में बैठे 3 अलग अलग अज्ञात जूरी सदस्यों के पास जाता है।
अच्छा, रैंडम लोगों के पास?
हाँ, और ये तीनों एक दूसरे को नहीं जानते, और बिल्डर को तो बिल्कुल नहीं पता होता कि जूरी में कौन है। वे इस कच्चे वीडियो को देखते हैं और कुछ खास तकनीकी और तथ्यात्मक सवालों के जवाब देते हैं।
क्या बात है।
क्योंकि बिल्डर को पता ही नहीं है कि वीडियो कौन रिव्यू कर रहा है, इसलिए स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह की रिश्वतखोरी या मिलीभगत को पूरी तरह से रोका जा सकता है।
ये तो वाकई बहुत चालाकी से बनाया गया सिस्टम है यार।
इतना ही नहीं, अगर जमीन के कागजों की बात करें तो स्वतंत्र वकील जमीन के पिछले 30 साल के टाइटल की जांच करते हैं, और जब नींव और छत की ढलाई होती है तो वरिष्ठ सिविल इंजीनियर साइट पर जाकर स्ट्रक्चरल हेल्थ रिपोर्ट बनाते हैं। ये सारा डेटा एक कंसेंसस वैलिडेशन वॉल्ट से होकर गुजरता है, और जब सब कुछ वेरीफाई हो जाता है तभी वो खरीदार के डैशबोर्ड पर लाइव होता है।
तो इन सब का निष्कर्ष क्या निकलता है? मतलब एक तरफ तो ये जबरदस्त पारदर्शिता है, लेकिन एक मिनट, अगर एक स्थानीय रनर साइट पर जाकर वीडियो बना रहा है,
हाँ,
तो जाहिर है कैमरे में किसी मजदूर का चेहरा आ सकता है या साइट के बाहर खड़ी किसी गाड़ी का नंबर आ सकता है, और हमारे सोर्स मटेरियल के अनुसार ये सारा डेटा पॉलीगॉन ब्लॉकचेन या आरवीव परमावेब पर जा रहा है।
बिल्कुल जा रहा है।
आरवीव जो कि एक तरह का स्थायी न मिटने वाला इंटरनेट स्टोरेज है, ये ऐसी प्रणालियां हैं जो हमेशा के लिए अपरिवर्तनीय हैं, मतलब इम्यूटेबल हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा कानूनी पेच फंसता है।
एक्शन एक्ट जो 2023 में आया था, इस कानून के तहत हर नागरिक को अपना डेटा मिटाने का अधिकार, राइट टू इरेजर, मिला हुआ है।
सही बात है।
तो अगर कल को कोई मजदूर या व्यक्ति कहे कि मेरा चेहरा आपके सिस्टम से हटाओ, और डेटा तो ब्लॉकचेन पर है जहां से कुछ मिटाया ही नहीं जा सकता, तो ब्लॉकस्टेट इस कानून का पालन कैसे कर रहा है? क्या ये सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन नहीं है?
ये वेब 3 की दुनिया की सबसे बड़ी बहस का हिस्सा है, ब्लॉकचेन की अपरिवर्तनीयता बनाम डेटा मिटाने का अधिकार।
और इसका जो समाधान ब्लॉकस्टेट ने निकाला है वो काफी चतुर है।
क्या समाधान है?
वे कानून से टकराने के बजाय तकनीक का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन रास्ता निकालते हैं। सबसे पहले आता है उनका AI सेंटिनल सिस्टम।
ये AI सेंटिनल क्या करता है?
रनर का वीडियो सीधे ब्लॉकचेन पे कभी नहीं जाता। जैसे ही वीडियो अपलोड होता है, ये AI सेंटिनल डेटा मिनिमाइजेशन के नियम के तहत तुरंत काम पर लग जाता है। ये वीडियो में मौजूद चेहरों, गाड़ियों की नंबर प्लेट्स या किसी भी अन्य व्यक्तिगत पहचान को धुंधला कर देता है, मतलब ब्लर कर देता है।
अच्छा, पहले ही ब्लर कर देता है?
हाँ, और साथ ही ये डीप फेक स्कैन भी करता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है।
ठीक है, वीडियो तो धुंधला हो गया, लेकिन असली डेटा और कानूनी दस्तावेजों का क्या? प्रॉपर्टी के कागजात में तो लोगों के नाम, पैन नंबर और कई निजी जानकारियां होती हैं। उन्हें कैसे सुरक्षित रखा जाता है?
यहीं पर क्रिप्टो शेडिंग की तकनीक काम आती है।
क्रिप्टो शेडिंग?
जी, असली और संवेदनशील डेटा कभी भी पब्लिक ब्लॉकचेन पर नहीं रखा जाता। जो डेटा ब्लॉकचेन पर जाता है वो सिर्फ एक क्रिप्टोग्राफिक हैश होता है।
इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाइए, ये हैश क्या है?
ये हैश सिर्फ नंबरों और अक्षरों की एक रैंडम बेतरतीब स्ट्रिंग होती है। कानूनी रूप से ये कोई पर्सनल डेटा नहीं है, क्योंकि इससे किसी इंसान की पहचान नहीं हो सकती। ये सिर्फ इस बात का डिजिटल सबूत है कि फलाना समय पे एक असली डॉक्यूमेंट मौजूद था।
तो फिर असली डॉक्यूमेंट कहाँ जाता है?
असली संवेदनशील डेटा को एक बहुत ही मजबूत ताले, जिसे AES-256 एन्क्रिप्शन कहते हैं, उसके साथ आरवीव पर भेजा जाता है। ये ताला इतना मजबूत होता है कि दुनिया का कोई भी सिस्टम इसे आसानी से नहीं तोड़ सकता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उस ताले की चाबी यानी डिक्रिप्शन की ब्लॉकस्टेट के अपने प्राइवेट डेटाबेस में सुरक्षित रहती है।
ओह, अब मैं समझ रहा हूँ। तो अगर कोई व्यक्ति कल को आकर अपने डेटा मिटाने के अधिकार का इस्तेमाल करता है और कहता है कि मेरा डेटा हटाओ, तो ब्लॉकस्टेट को ब्लॉकचेन से कुछ भी मिटाने की जरूरत ही नहीं है।
बिल्कुल, वे बस अपने प्राइवेट डेटाबेस से उस ताले की चाबी को डिलीट कर देते हैं।
कमाल है।
बिना उस चाबी के आरवीव पर पड़ा वो एनक्रिप्टेड डेटा हमेशा के लिए सिर्फ एक गणितीय कचरा या अनरीडेबल डिजिटल नॉइज बन जाता है, जिसे कभी भी पढ़ा या खोला नहीं जा सकता।
यार, ये एक बहुत ही परिष्कृत और साफ सुथरा समाधान है। प्राइवेसी भी सुरक्षित हो गई, कानून का पालन भी हो गया और ब्लॉकचेन की जो अपनी एक अखंडता है वो भी बरकरार रही।
इसे ही क्रिप्टो श्रेडिंग कहते हैं। ये भौतिक रियल एस्टेट और आध्यात्मिक तकनीक का एकदम सही मिलन है।
और पता है, जब हम इस पूरे समाधान को देखते हैं तो ये पारंपरिक ईंट पत्थर और आधुनिक तकनीक का एक अनोखा संगम लगता है। दिलचस्प बात यह है कि यही विजन ब्लॉक रेस्टेट की ब्रांडिंग या उनकी लोगो में भी झलकता है।
हाँ, मैंने भी उनका लोगो देखा है।
हमारे सोर्स मटेरियल में इसका जो विजुअल डिस्क्रिप्शन है उसमें बीच में नीले रंग की ऊंची इमारतें हैं जो भौतिक रियल एस्टेट को दर्शाती हैं, और उनके चारों ओर सफेद और नीले रंग के ब्लॉकचेन क्यूब्स एक नेटवर्क की तरह जुड़े हुए हैं, और ये सब एक हरे रंग के आधार पर टिका है।
बहुत ही सोच समझ कर बनाया गया डिजाइन है।
बिल्कुल, ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे पारंपरिक रियल एस्टेट की नींव में अब ब्लॉकचेन का मजबूत पारदर्शी नेटवर्क बुना जा रहा है।
ये एक सटीक विश्लेषण है, लेकिन इस पूरे इकोसिस्टम में एक और बात है जो इसे पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष बनाती है।
वो क्या है?
पैसे का सुरक्षित प्रवाह। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि अगर कंपनी ही सारा वेरिफिकेशन का काम कर रही है तो क्या वो पैसे के लालच में डेटा से छेड़छाड़ नहीं करेगी?
हाँ, हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो हो ही सकता है।
इसीलिए ब्लॉक रीस्टेट कभी भी घर खरीदार का पैसा अपने पास नहीं पकड़ता, वे सिर्फ एक निष्पक्ष ऑडिटर की तरह काम करते हैं।
तो फिर पेमेंट कैसे होती है?
अपने रनर्स, वकीलों और जूरी को भुगतान करने के लिए वे रेजर पे, एस्क्रो और स्मार्ट कलेक्ट जैसी सुरक्षित प्रणालियों का उपयोग करते हैं। एस्क्रो बेसिकली एक सुरक्षित खाता होता है जहां पैसा तब तक रखा जाता है जब तक कि वेरिफिकेशन का काम पूरी तरह से खत्म न हो जाए।
अच्छा, तो पैसा होल्ड पे रहता है?
जी, इससे यह सुनिश्चित होता है कि पैसे के लेन देन का असर वेरिफिकेशन की निष्पक्षता पर बिल्कुल न पड़े।
ये तो खरीदारों के लिए बहुत ही सुरक्षित व्यवस्था हो गई, लेकिन इस पूरे सिस्टम में बिल्डर्स के लिए क्या है? मतलब उनके लिए इस पूरी व्यवस्था को अपनाना कितना आसान या मुश्किल है?
अच्छे बिल्डर्स के लिए बहुत ही शानदार एंटरप्राइज पैकेज बनाए गए हैं, जैसे कि हाई राइज टाउनशिप पैकेज।
इसमें क्या खास है?
इसमें इतनी गहराई तक जांच होती है कि प्रोजेक्ट पूरा होने पर खरीदार को सिर्फ उस फ्लैट के कागज ही नहीं मिलते बल्कि ब्लॉक चेन पर उस फ्लैट का एक NFT भी मिलता है।
NFT? क्या बात कर रहे हैं?
हाँ, जो हमेशा के लिए मालिकाना हक का एक डिजिटल सबूत बन जाता है।
और जो लोग फ्लैट्स की जगह सीधे जमीन या रो हाउस खरीद रहे हैं,
उनके लिए लैंड एंड रो हाउस पैकेज है जो प्लॉट के हिसाब से वेरिफिकेशन करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ईमानदार बिल्डर्स के कैश फ्लो या नकदी पर अचानक से कोई बोझ न पड़े, इसके लिए रेजरपे के जरिए 4 से 6 महीने की बिना ब्याज वाली किश्तों की सुविधा भी दी जाती है,
ताकि वे आसानी से इसे अपना सके।
बिल्कुल, ताकि वे इस पारदर्शिता को बिना किसी आर्थिक दबाव के अपने प्रोजेक्ट्स में लागू कर सकें।
यार, ये सब सुनने के बाद एक बात तो साफ है कि रियल एस्टेट में वो दौर अब खत्म हो रहा है जहां लोग अंधेरे में करोड़ों रुपए लगा देते थे। तकनीक ने अंधविश्वास को गणितीय भरोसे में बदल दिया है।
100% सच बात है ये।
लेकिन जो लोग आज अभी बाजार में घर खरीदने जा रहे हैं, उन्हें सिर्फ इस तकनीक के पूरी तरह से लागू होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। उनके लिए हमने एक कारपेट एरिया शील्ड एक्शन प्लान तैयार किया।
ये बहुत जरूरी है, सबको पता होना चाहिए।
जब तक कोई भी खरीदार ये 4 चीजें अपनी आंखों से ना देख ले, किसी भी पेपर पर साइन नहीं करना चाहिए।
पहला क्या है?
पहला, सेल्स ऑफिस में कोई रंग बिरंगा ब्रोशर देखने के बजाय बिल्डर से सिर्फ रेरा अप्रूव्ड ब्लूप्रिंट मांगना चाहिए। दूसरा, प्राइसिंग शीट पर साफ शब्दों में कार्पेट एरिया का जिक्र होना चाहिए।
और तीसरा?
तीसरा, बिल्डर जो भी लोडिंग फैक्टर लगा रहा है वो स्पष्ट रूप से लिखित में होना चाहिए, हवा में नहीं। और चौथा, बुकिंग का 1 भी रुपया देने से पहले अलॉटमेंट लेटर का ड्राफ्ट पूरा पढ़ना चाहिए।
बहुत बढ़िया सलाह है। और अगर कोई खरीदार खुद इसकी जांच करना चाहे कि वो कितनी अतिरिक्त कीमत चुका रहा है, तो लोडिंग फैक्टर निकालने का एक बहुत ही आसान सा जादुई फॉर्मूला है।
वो फॉर्मूला भी बताई दीजिए।
कोई भी अपने फोन के कैलकुलेटर पर ये फॉर्मूला लगा सकता है। सबसे पहले बिल्डर द्वारा बताए गए सुपर बिल्टअप एरिया में से कार्पेट एरिया को घटाएं, फिर जो भी जवाब आए उसे कार्पेट एरिया से भाग दें यानी डिवाइड करें,
ठीक है,
और आखिर में उसे 100 से गुणा कर दें, मतलब मल्टीप्लाई कर दें। ये करते ही तुरंत वो प्रतिशत निकल आएगा कि कितनी हवा के लिए आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं।
ये एक बहुत ही सशक्त हथियार है खरीदारों के लिए।
एक और बहुत ही काम की स्क्रिप्ट है जो लोग सीधे बिल्डर की सेल्स टीम से कह सकते हैं।
क्या कह सकते हैं?
वे कह सकते हैं
कि देखिए, मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद है, लेकिन मैं तभी निवेश करूंगा जब मुझे ब्लॉक री स्टेट का टैम्पो प्रूफ डिजिटल प्रूफ मिलेगा। मैं अपना पैसा तब तक रोक कर रखूंगा जब तक मुझे मेरे भविष्य के घर की असली वेरिफिकेशन हिस्ट्री नहीं मिल जाती।
ये वाक्य सीधे तौर पर बिल्डर पर पारदर्शिता के लिए एक सकारात्मक दबाव डालता है। खैर, इस गहरी और आंखें खोलने वाली चर्चा के अंत में एक विचार छोड़कर जाना बहुत जरूरी लगता है।
बिल्कुल।
हमने शुरुआत में एक्सरे मशीन की बात की थी, जो चीजों को साफ साफ दिखाती है। आज ये ब्लॉकचेन तकनीक और लाइव हार्टबीट डैशबोर्ड खरीदारों को लाइव अपडेट्स और गणितीय गारंटी देकर रियल एस्टेट का एक साफ एक्सरे दे रहे हैं।
सही कह रहे हैं।
लेकिन जरा सोचिए, आज से 10 या 20 साल बाद का बाजार कैसा होगा?
ये एक बहुत ही दिलचस्प कल्पना है,
है ना? एक पूरी पीढ़ी ऐसी होगी जिसके पास ऐसे घर होंगे जिनका ब्लॉकचेन पर एक साफ, अपरिवर्तनीय और पारदर्शी इतिहास मौजूद होगा। नींव खुदने से लेकर छत डलने तक का हर एक सच डिजिटल रूप से सुरक्षित होगा। वहीं दूसरी तरफ पुराने घरों के पास सिर्फ एक दूसरे के हाथ से गुजरे हुए पीले पड़ते कागज होंगे, जिनकी प्रमाणिकता साबित करना बहुत मुश्किल होगा।
एकदम सही बात है।
तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में बिना डिजिटल वेरिफिकेशन हिस्ट्री वाले घरों को बेचना लगभग असंभव हो जाएगा? क्या आने वाले समय में हमारा पूरा का पूरा रियल एस्टेट मार्केट दो पूरी तरह से अलग हिस्सों, वेरीफाइड और अनवेरीफाइड में नहीं बढ़ जाएगा?
बहुत मुमकिन है ऐसा हो,
जहाँ वेरीफाइड घरों की कीमत प्रीमियम होगी और अनवेरीफाइड घरों को हमेशा शक की निगाह से देखा जाएगा। इस बारे में जरूर सोचिएगा।